पर रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
बिलासपुरियंस की आवाज
सभी श्रोता साथी स्वीकारे अपनी अलंकृता का नमस्कार। महीना है सावन का और चारों ओर भक्ति माहौल छाया हुआ है। इस बीच कहीं शिव जी की आरती पूजा अर्चना चल रही है तो कहीं लोग बरसात का आनंद ले रहे हैं। ऐसे आपको पता है सावन में दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि इस वक्त रोगाणुओं और जीवाणुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है और पत्तेदार सब्जियों में भी कीड़े मकौड़े पाए जाते हैं। इसके कारण पत्ते दूषित होते हैं और इन्हीं पत्तों का सेवन करते हैं पशु यानी कि गाय भैंस और इसका असर उनके दूध पर भी आ जाता है। इसीलिए दूध से इन रोगाणुओं और जीवाणुओं के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सावन में दूध नहीं पीना चाहिए और शायद यही कारण हो सकता है कि पीने के बजाय दूध शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान शिव सभी प्रकार के विष को धारण कर लेते हैं। वैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का एक और कारण हो सकता है, वो है भक्ति श्रद्धा और विश्वास का। खैर हम बात कर रहे हैं शिवलिंग के विषय में तो आइए जानते हैं रतनपुर में स्थित बूढ़ा महादेव के बारे में और इसकी जानकारी हमें देंगे गिरीश मिश्रा।
मैं आपसे ये जो रतनपुर में स्थित बूढ़ा महादेव है
जी
उनके बारे में जानना चाहती हूँ।
जी रतनपुर का बूढ़ा महादेव काफी प्रसिद्ध है और कई मायने से प्रत्यक्ष प्रमाण भी वहाँ जाने से मिलता है। ऐसी कई पुस्तकें हैं जो प्राचीन जो हिंदी छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी इसका कई जगह वर्णन है कि विद्येश्वर महादेव भी बोलते हैं, बूढ़ा महादेव भी बोलते हैं। विद्येश्वर महादेव इसलिए बोलते हैं कि उस समय राजा तत्कालीन राजा विद्युसेन जो थे तो वो उनके यहाँ के जो चरवाहा होता था गाय को चराने के लिए जंगल में लेके जाता था तो उस भीड़ में से बहुत सारी गाय इतने भीड़ थी जो जिसको बोलते हैं सुरही गाय बोलते हैं वो गाय जो वहाँ भीड़ से अलग होके बांस के झुंड में जाके गायब हो जाती थी। ये रोज का क्रम तो चरवाहा एक दिन देखता है कि आखिर गाय जाती कहाँ है तो पता चलता है कि एक बांस के झुंड में हो जाती है और बीच में जाके खड़े हो जाती है और उसके तन से दूध निकलता है और दूध जो है नीचे बिंब नुमा कहीं जाके गिरता है उसका कुछ पता नहीं चलता वो दूध गिरता कहाँ जा रहा है तो ये बांस जाके राजा विदुसेन को बताता है चरवाहा ऐसा सा बात है महाराज जी तो बोलते चलो पता करते हैं तो उसको झाड़ी को साफ करते हैं बांस को तो बांस की झाड़ी को साफ करते हैं तो पता चलता है वहाँ शिवलिंग है वो बिमनुमा है बिमनुमा शिवलिंग तो वहाँ से उन लोग बोलता है ये तो शिवलिंग है तो उसको निकाल के फिर वहाँ पे उन लोग मंदिर वंदिर बनाते हैं इसलिए राजा विदुसेन के रूप में विद्येश्वर महादेव भी कहते हैं। और इसमें सामने आप जाएंगे ना तो उनके सामने कुंड है बड़ा सा कुंड है बड़ा सा कुंड अभी जो यहाँ जल चढ़ाते अभी सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के समय में तो पूरे लाइन से खड़े हो जाते हैं श्रद्धालु और हौला या बड़ा बेचकी किसी में लेके लाइन से एक के हाथ से एक के हाथ दूसरे के हाथ जाते हुए शिवलिंग जो है उसके ऊपर चढ़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि वो कुंड का पानी कम हो जाता है लेकिन जो शिवलिंग का जो बिमनुमा है उसमें जो पानी का लेवल जस का तस रहता है ना कम होता है ना छलकता है। ऐसी एक किंवदंती और बताते हैं कि जो अंग्रेज के समय में वहाँ मराठा शासन काल था उसके बाद अंग्रेज आए तो वहाँ एक अंग्रेज के कानों में बात चली तो वो भी गया कि आखिर है क्या चलो देखता हूँ वो क्या कि कुछ पानी का ऐसा व्यवस्था की उसमें लगातार उसमें पानी डाले बोले ऐसा हो नहीं सकता वैज्ञानिक कुछ महत्व होगा वो लगातार उसमें पानी डालते हैं एक समय बाद क्या होता है उसमें धुआं निकलने लगता है तो वो अंग्रेज जो है ये बातें मैं कई पुस्तकों में पढ़ा हूँ वो अंग्रेज में भग जाता है वहाँ से। और काफी समय पहले मैं खुद गया था तो उसमें पहले एक सिक्का डालते थे मैं खुद डाला हूँ ये लगभग आज से 30-35 साल पहले की बात है तो उसमें सिक्का डालते तो खन 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 करके आवाज आता है लेकिन सिक्का कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं है तो इसके बहुत महत्व है। अभी जो है बेलपान से जितने भी श्रद्धालु है बेलपान से जल लेके आते हैं इसमें चढ़ाते हैं तो रतनपुर में बहुत अच्छा माहौल रहता है देखने के लिए ये जानकारी मेरे को है और काफी अच्छा बढ़िया मंदिर है आप भी खुद हो चाहिए वहाँ।
बिल्कुल बिल्कुल ये सभी चीजें आपने बताई और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी।
जी एक्चुअली रतनपुर ही अपने आप में बहुत बड़ा शोध का विषय है रिसर्च का विषय है
बिल्कुल एकाद कुछ आप अभी हमें बता सकते हैं?
जी, वहाँ रतनपुर में कृष्णार्जुनी तालाब है।
जी,
कृष्णार्जुनी तालाब इसलिए कहा जाता है कि यदि आप पुराने पुस्तक, वहाँ एक वकील साहब है, उनके पास एक पांडुलिपि लिख के रखा हुआ है, तो उसमें राजा मोरद ध्वज के शासन काल से रत्नदेव, पृथ्वी देव, बहार साय करते हुए मराठा शासन काल से अंग्रेज शासन काल में जिन जिन लोगों ने वहाँ राज्य किया है, पूरा उसमें विस्तार से दिया है कि किसके कितने संतान हुए, तखती देव जो तखतपुर कैसे बसा, ये पूरी उसमें जानकारी दी गई है। तो मोरद ध्वज राजा उस समय का, जब वो होता है अश्वमेध यज्ञ करते हैं अर्जुन, तो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा है छोड़ते हैं, तो उसके साथ भगवान कृष्ण अर्जुन उस घोड़े के साथ साथ आते हैं रतनपुर के पास, और वहाँ पे घोड़े को बांध देते हैं, तो उसको घुड़बंदा तालाब भी बोलते हैं और कृष्णार्जुनी तालाब भी बोलते हैं। तो वहाँ पर राजा मोरद्वज की काफी, आपने सुना होगा कि उसके शेर को भूख लगता तो वो अपने बेटे को चीर के देते हैं। तो आने वाली कथा जो है आरंग में भी कहा जाता है, रतनपुर में भी कहा जाता है, और कहते हैं है वंशी जो राजा थे, के बाप जो राजा होते थे, उनके मस्तक तक के आरा से चीरने का निशान रहता था, और चिजम साहब जो थे सेटलमेंट ऑफिसर जो उसमें थे अंग्रेज, वो खुद बोले कि हमने खुद देखा कि यहाँ है, उस समय के बाद से ना रतनपुर में आरे का प्रयोग नहीं होता था, लोग बसुला का प्रयोग करते थे। ये चिजम साहब ने खुद अपने रिपोर्ट में लिखा कि वहाँ जितनी भी बिल्डिंग है मनीष जी, तो वहाँ आरे का प्रयोग नहीं होता था, बसुला से प्रयोग करके जो म्या या लकड़ी का कोई भी आइटम बनाते थे तो उसी का उपयोग करते थे। मैं आपको कृष्णार्जुनी तालाब के बारे में बता रहा हूँ। कृष्णार्जुनी तालाब जो है इस समय में मौसम वेदशाला का गणना का बहुत प्रमुख केंद्र था। वहाँ पे सूर्येश्वर मंदिर है, और उसमें अगर आप देखेंगे तो दीवार में सूर्य देव का भी मूर्ति है, और वो पूर्वामुखी है मंदिर। जब सूर्य पहली बार उदय होता है तो सूर्य का पहली किरण शंकर जी के ऊपर पड़ता है, और वहाँ के लोग जो प्राचीन काल में जो विद्वान होते थे भूगोल के, या पंडित होते थे जो अपने पंचांग में कोई अशुद्धि है उसको शुद्ध करने के लिए वहाँ आते थे, और वो शिवलिंग के ऊपर रखते थे। आप शिवलिंग को भी देखेंगे तो गोल है, ऊपर में कुछ रखने के लिए स्थान बना हुआ है, वो शिवलिंग भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो वो शिवलिंग के ऊपर रखते वो अपने पंचांग अशुद्धि को दूर करते थे, तो उसको उस मंदिर को मतलब वेदशाला के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा वो तालाब भी अपने आप में बहुत अलौकिक कहने वाले है, जी कहते हैं एक समय में वहाँ पारस पत्थर भी पाया जाता था, लेकिन ये कुदंतियाँ हैं।
काफी जानकारी है आपको रतनपुर के बारे में।
जी, मैं पिछले लगभग 30-40 साल, मेरी उम्र जो है 50 साल है, मैं 30-40 साल से वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। जी बिल्कुल, नहीं पता है विष्णु महायज्ञ वहाँ हुआ था सन 1944 में। तब वो ऐसा अद्भुत विष्णु महायज्ञ था कि पूरे छत्तीसगढ़ के राजा महाराजा जमींदार ये लोग सब मिल के वहाँ विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँचे थे, वो भी अपने आप में अलौकिक था।
आपको काफी जानकारी है रतनपुर के बारे में, आप किस माध्यम से जुड़े हुए हैं रतनपुर से?
मैं बहुत छोटा था, मैं तो एक बार अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मैं वहाँ गया, तो वहाँ के बारे में उस समय तो कोई नहीं जानते थे। मतलब पैदल यात्रा जो नवरात्रि के समय जो शुरू हुआ है, मेरे जानकारी में 90 के पहले मतलब 80-85 के आसपास यहाँ पैदल यात्रा करके, फिर वो महामाया का नाम बहुत उच्चात हुआ उसके बाद, उसके पहले कोई नहीं जानता था, वहाँ जाने का मार्ग भी बड़ा दुर्गम था। तो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ गया, तो जो चीज मैं देखा वो मेरे को बहुत टच किया, तब से मेरे को रतनपुर से बड़ा गहरा लगाव हो गया। इसमें फिर मैं मल्हार भी गया, या मेरा खुद का गांव जांगीर है, जो वहाँ देखेंगे विष्णु देव का बड़ा आधा अधूरा बना मंदिर नक्शा देव बोलते हैं, तो ये सारी चीजें कहानियां मैं सुनता था, उदंतियां सुनता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, भरोसा होता था। लेकिन मैं इन चीजों को जाके धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट, मैं आपको एक और अच्छी चीज बता रहा हूँ। रतनपुर में ना वेद रत्नेश्वर तालाब है, रानी वेदमती और राजा रत्नदेव, वो कहाँ है, कलचुरी पारा, करहैया पारा, आज के डेट में बोलचाल की भाषा में करहैया पारा हो गया, उसको उसके एक्चुअल नाम था कलचुरी पारा, राजा महाराजाओं के रिश्तेदार वहाँ रहते थे। तो कहते हैं कि राजा रत्नदेव जो है उनकी पत्नी का नाम था वेदमती, वो कश्मीर की रहने वाली थी। आप कल्पना कीजिए, कई हजार साल पहले यदि कोई, आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, गाड़ी है, ट्रेन है, हवाई मार्ग है, लेकिन उस समय लोग बैलगाड़ी से या तो फिर घोड़ा गाड़ी से उतनी दूर यात्रा करते थे। तो राजा रत्नदेव कश्मीर गए, कश्मीर की रानी को वहां से उनकी शादी हुई, कश्मीर की रानी को या उनको भेंट में मिला होगा, या जैसे जो वहाँ की रानी थी तो वह उसको छत्तीसगढ़ के रत्नदेव के साथ उसका विवाह हो गया। तो जब रानी कश्मीर से विदा ले रही थी तो वहाँ की मिट्टी उठा के ले आई। अब कल्पना कीजिए जब वहाँ से घोड़ा गाड़ी में या बैल गाड़ी में अगर आ रहे हैं कश्मीर से रतनपुर तो कई महीने लगे होंगे।
बिल्कुल,
वो हाथ में रखा हुआ जो मिट्टी है इतना ज्यादा सख्त हो गया पत्थर की तरह। तो वो जैसे ही कढ़िया पारा के पास पहुँचे तो वो उसके हाथ पसीने के कारण पीतल के गिर गया। तो वो रानी बड़ी परेशान हुई, जाके फिर थकी थी सो गई होगी, रात में सपना आया कि तुम्हारे हाथ जो कश्मीर की जो मिट्टी लेके आए हो वो एक्चुअली में शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गया है और ये जो है वेद रत्नेश्वर तालाब के बीच में मैं स्थापित हूँ, यदि आप मेरे पूजा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे तो मेरा पूजा कर सकते हैं। तो रानी ये बात राजा को बताती है, फिर राजा भी सुना सुना कर देते हैं। फिर वो बहुत सुबह जाती है तो देखती सच में वहाँ पे शिवलिंग है। तो जाए कैसे, तो जाती थी तो कमल के पत्ते जो है उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की और सफल हो गई, कमल के पत्ते डूबे नहीं उसमें चढ़ते हुए, कमल के पत्ते में चलते हुए वो वहाँ शिवलिंग का रोज पूजा किया करती थी। तो रोज पूजा करती थी, ये बात धीरे धीरे रतनपुर के ग्राम वासियों में फैल गई कि रानी जो है पूजा करने आती सुबह 4 बजे। राजा रत्नदेव बहुत पूरे प्रदेश में विख्यात है, तो राजा रत्नदेव की पत्नी आती तो सबको कौतूहल होता है कि यार रानी दिखती कैसी है, हम लोग जरूर देखेंगे। तो लोग सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और रानी आती नहाने के लिए तो देखते एकदम साधारण महिला की तरफ, मतलब इतना बड़ा राजा और उसकी पत्नी के शरीर में ना कोई गहना ना कोई महंगे वस्त्र ना कुछ, एकदम साधारण महिला की तरह आ रही है पूजा करने के लिए। दूसरे दिन बात पूरे गांव में चर्चा होता है कि अरे इतना नाम सुने थे राजा रत्नदेव की पत्नी का, लेकिन उसके पास एक ढंग का गहना नहीं है ना ढंग का कोई साड़ी है। फिर ये बात धीरे धीरे राजा के कानों में पहुंचता है, राजा को लगता है हाँ इनका कहना सही है, उनको शर्मिंदगी होती है। तो ये क्या करते हैं कि राजा अपनी रानी को महंगे महंगे वस्त्र महंगे गहना सोना जेवर ये सब पहना देते हैं। तो दूसरे दिन जाती है रानी फिर पूजा करने के लिए तो वो पुराइन पत्ता को चढ़ नहीं पाती और वो शिवलिंग का पूजा नहीं कर पाती है। तो बड़ा दुखी होती है। फिर आती फिर शंकर जी उनको स्वप्न बोलते हैं कि तुम्हारे श्रृंगार के कारण राजा ने इतना सारा टैक्स जो है ग्रामीणों पर बढ़ा दिया और तुम्हारे लिए गहना लिए, तो इसका तुम्हारे गहने के कारण आम जनता परेशान हो रही है, तो इसलिए मैं तुमको दर्शन नहीं दूंगा, ऐसा बोले। तो ये बात फिर रानी अपने राजा को के बोलती है तो राजा को बहुत अफसोस होता है, जितना उन लोगों से टैक्स लिए रहे थे उसे दोगुना वापस करते हैं, लेकिन वो फिर से वो पुराई पत्ता पे चल के नहीं आ पाती है। फिर स्वप्न देते हैं कि आप मेरे को वो जो हो गया आप मुझे किनारे में ला के स्थापित कर दीजिए। उसको किनारे में लाकर स्थापित किया, आज भी उसको आप देख सकते हैं। और वो यही मेरा विशेष अनुभव रहा है कि मैं काफी समय पहले वहाँ गया तो वो शिवलिंग काफी छोटे आकार का था और आज काफी बड़ा हो गया है, ये प्रत्यक्ष अनुभव मेरे को रहा है।
वो शिवलिंग के साथ बड़े होते जा रहे हैं वो शिवलिंग।
हाँ, वो शिवलिंग का आकार बढ़ रहा है।
ये सारी चीजें आपने बताई वो तो मुझे भी नहीं पता थी और बहुत सारे बिलासपुर वासियों को भी नहीं पता होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजर और गजर में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुदुगन में रहने वाली हमारी अल्पा संगनी सीमा जी के पास और जानते हैं इनसे इनके मोहल्ले का हाल। फिलहाल इनके मंदिर में इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है और हर साल कांवर यात्रा करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग स्थापना करने की इच्छा इनके मन में कैसे आई।
हाँ जी, नमस्कार सभी सखियों को। ये हमारा मंदिर गोल्डन चांदनी चौक में स्थित है और हमारे यहाँ मंदिर तो शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना है और उसके केवल शिव जी का था और उसमें फिर हमारे मतलब क्या पूजा आस पास कोई भी मंदिर नहीं है और यहाँ अभी मतलब काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जब से कोरोना काल हुआ था उसके बाद से लोगों में बहुत ज्यादा मतलब धार्मिक भावनाएं जागी हैं और लोग चाहते हैं कि हम मतलब पूजा पाठ से बहुत ज्यादा
जुड़े
आस्था बड़ी है। तो हम ऐसे बैठे थे, सभी सखियां आपस में बातचीत कर रहे थे तो हम लोग ने कहा क्यों ना हम 12 ज्योतिर्लिंग लाया जाए यहाँ पे शिव मंदिर में, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह भी थी और लोगों की इच्छाएं भी थी कि हमारा मंदिर थोड़ा बढ़े विस्तार रूप से। तो हम लोग यूं ही चर्चा किए और बात करते करते फिर अचानक से ऐसा हुआ कि शिवरात्रि में हम संपर्क किए और मूर्तियां मंगाई और फिर इस तरीके से हमारा ज्योतिर्लिंग हमारे मंदिर में आ गए। हमने बढ़िया शिवरात्रि में जा पाठ किए, अभिषेक वगैरह हुआ और बहुत खूबसूरत माहौल बन गया। अब पूरे कुदुडन में आसपास में काफी दूर तक यहाँ पे कहीं भी बारह ज्योतिर्लिंग का मंदिर नहीं है हमारे एरिया के अलावा, और इसमें सभी की सहभागिता है। हम जितने हमारे मोहल्ले वासी हैं काफी कुछ मदद होती है हमसे, और वो पूरे पूरा हमारा जो कुदुडन का एरिया है पूरे भक्ति भाव से डूबे हुए हैं और बहुत अच्छा माहौल है।
जी बिल्कुल, वहाँ की महिलाएं सभी बड़े मन से हर चीजों में भाग लेती हैं।
हाँ बहुत मन से भाग लेती हैं, बहुत। अभी देखिए सावन का महीना है और आप जानते हैं कि सावन के महीने में कांवर यात्रा की जाती है।
जी जी, जी।
तो हम भी हर साल ये चालू कर दिए हैं, तो हमारी इस कांवर यात्रा में छोटे छोटे बच्चों से लेके 3 साल के बच्चों से लेके
अच्छा
90 साल के बुजुर्ग तक की भागीदारी होती है। और कांवर हम घर पे ही बनाते हैं, छोटे बच्चों को तांबे का लोटा में रस्सी बांध के और उनको छोटे छोटे उसमें कांवर बना के, ताकि वो जाने कि हमारी संस्कृति में सनातन धर्म में कांवर यात्रा का क्या महत्व है, सावन महीने का क्या महत्व है, और जो जलाभिषेक अपन करते हैं शिव जी में
जी,
तो वो सारी चीजें का ये सब करते करते उनको भी थोड़ी सी जागरूकता आती है, बच्चों में उत्सुकता भी रहती है कि हमको मतलब क्या कैसे करना चाहिए। सब देखते हैं कि बड़े बूढ़े बच्चे सभी पूजा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर चलते हैं, सोचिए
अच्छा।
पूरा हमारी यात्रा शुरू होती है नेशनल अकेडमी ऑफिस है कुड़ुरन चांदनी चौक में,
अच्छा
तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है जो कि कुड़ुरन चांदनी चौक से होते हुए नीलम चौक पहुँचती है।
जी
मिलन चौक से फिर हम जाते हैं सीधा इंदिरा सेतु क्रॉस करते हैं। इंदिरा सेतु क्रॉस करने के बाद हमको मिलता है तिलक नगर, तिलक नगर के बाद सीधे हम चले जाते हैं देवकी नंदन चौक।
अच्छा,
और देवकी नंदन चौक होते हुए सीधे हम पहुँच जाते हैं रिवर व्यू के पास। वहाँ से हम चल, क्योंकि नदी में इसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है
जी,
और हमारे पास छोटे 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 बच्चे भी रहते हैं और बच्चे तो बहुत ज्यादा चुलबुल होते हैं, उतावले होते हैं, तो थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से हम उसको जल पानी में नहीं उतरने देते। और सब का कांवर पंडित जी के माध्यम से सब ये कांवर में जल भरा जाता है अर्पण नदी का जल लेकर, और फिर हम क्योंकि अब बच्चे हैं छोटे छोटे कांवर लेके चलते हैं, कांवर को उछलना है, तो जब तक हम अपने जहाँ पे हमको पहुँचना है वहाँ के पहुँचे तक तो पूरा जल तो
छलक जाएगा।
तो हम क्या करते हैं उस तांबे के लोटे में एक पॉलीथीन और रबर बैंड के माध्यम से उसको पैक कर देते हैं।
अच्छा,
तो बच्चे कितना भी उछले कुछ नहीं होना, मस्त भजन कीर्तन करते गाते बजाते फिर हमारी वापसी की यात्रा होती है। तो सीधे वहाँ से निकल के मेन रोड होते हुए देवकी नंदन चौक से होते हुए सीधे तहसील पहुँचते हैं। तहसील से हम लोग आ जाते हैं आपका PWD ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस होते हुए PWD ऑफिस से सीधा सेफर्ड स्कूल चौक करके पूरा कुड़ुरन के ढलान में शिव मंदिर में हमारी यात्रा पहुंची है। फिर यहाँ पंडित जी और पूरे जो नहीं जा सकते थे कांवर यात्रा में, जो काफी बुजुर्ग जन हैं और काफी छोटे बच्चे हैं और काफी हमारी मतलब बुजुर्ग माताएं वगैरह हैं, वो सारे सब इंतजार करते होते हैं मंदिर के पास। फिर पंडित जी बारी बारी से सभी का जल ले लेके उन्हीं से जो कांवर लेके आए रहते हैं वही 12 ज्योतिर्लिंगों में जल अभिषेक करते हुए अंदर शिव जी में करके फिर वहाँ पे हम उनके लिए थोड़ी भोजन वजन की व्यवस्था करते हैं, भोग प्रसाद के रूप में भोग की व्यवस्था करके भजन कीर्तन करते हुए फिर हमारे कार्यक्रम का समापन होता है। बहुत खूबसूरत माहौल होता है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे इस यात्रा में सभी जन की भागीदारी हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
बिल्कुल, मैं सुन के वो उत्साह और वो माहौल महसूस कर पा रही हूँ
जी।
इतनी लंबी यात्रा आप लोग तय करते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, और हर मौसम का और हर पूजा पाठ का एक उत्साह माहौल बना रहता है
जी। बहुत बढ़िया। असल में क्या हुआ था, देखिए हम काफी दिनों से हमारे मतलब कुड़ुरन एरिया में कहा जाता है कि ये तो बारूद के ढेर पे बसा हुआ है दुदन। और दूसरी बात, इसको गंदी बस्तियों की श्रेणी में भी लेते हैं। लेकिन आप इधर एक बार आइए, देखिए यहाँ सभी एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, सभी एक दूसरे को राधे राधे, छोटा बच्चा से लेके बड़े तक सभी एक दूसरे को देख के अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है कि ये नहीं कि कोई बच्चे निकल जा रहे हैं, कोई इधर चला जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आप बैठे रहेंगे, नमस्ते दीदी, नमस्ते अम्मा, आते जाते सभी को, एक दूसरे को छोटे बड़े सभी अपने एक दूसरे को अभिवादन करते हुए थोड़ी देर के बाद भी कर लेंगे। मंदिर हमारा वहाँ पे है, मंदिर में पूरे टाइम आरती होती है, हमारे यहाँ शाम को संध्या आरती होती है, सुबह की आरती होती है, शाम की जो आरती होती है ना संध्या आरती के बाद, वहाँ पे हमारे जो पंडित जी हैं तो वो बच्चे, काफी बच्चे हैं यहाँ पर, पूरे नगर एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, हर उम्र के बच्चे हैं। तो जब आरती समाप्त होता है तो प्रसाद वितरण से पहले हम एक भजन करते हैं, और भजन भी करने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे उस भी थोड़ा सा भक्ति भाव में डूबे। पढ़ाई तो हो गई उनकी बच्चों की, कोई ट्यूशन क्लास से आया है ना, कोई पढ़ के आया, कोई अपना होमवर्क करके आया, उसके बाद बच्चे थोड़ा वहाँ पे मंदिर में खेलते हैं, मंदिर परिसर में, तो हम खेल भी ऐसा खिलाते हैं जिसमें भक्ति भावना जागृत हो, मानसिक उनका विकास हो। हाँ, तो इस तरह के हमारे खेल में भी कुछ कुछ छोटे छोटे खेल है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम भजन करते हैं वहाँ पे बैठ के, बाकायदा मंजीरा वंजीरा लेके, झांझा वगैरह लेके, और मुश्किल से समझिए 3 मिनट का होता होगा भजन, और उस भजन में पूरे भक्ति भाव से बच्चे डूबे रहते हैं। फिर अपना थोड़ी देर खेलते हैं, करीब 9 समझ जाइए 8:30 बजे तक खेल खेलते हैं, उसमें हमारी महिलाएं भी सम्मिलित हो जाती है, जिनका भोजन भोजन बन गया होता है, भोजन भोजन कर लिया होता है, टहलने भी चलते हैं, और इस प्रकार से काफी अच्छा मतलब भक्तिमय माहौल है हमारी।
बिल्कुल, बात है कि आजकल देखते हैं सारे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं, और वहाँ पे आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का मानसिक विकास हो, साथ में वो हमारी धरोहर से संस्कृति से जुड़े रहें, काफी अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
धन्यवाद,
शुक्रिया।
तो श्रोता साथियों, हमने बात की बूढ़ा महादेव के बारे में, कुछ बातें रतनपुर की भी हमने की, और साथ साथ में कांवर यात्रा की भी बात की। अब चलते हैं आगे और सावन का आनंद बढ़ाते हैं सुनकर एक भजन, और भजन प्रस्तुत करेंगी हमारी अर्पा संगी गीता चंद्रवंशी।
बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, 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 बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। दुनिया के हर एक शर पे शिव शंभू का राज है, दुनिया के हर एक शर पे शिव शंभू का राज है, तू के फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा, तू के फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है, कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है, रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा, रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, करम डमरू माथे पे चंदा जटों से बहती है गंगा, करम डमरू माथे पे चंदा जटों से बहती है गंगा, नंदी पे आसन जमाता भोला भंडारी मेरा, नंदी पे आसन जमाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से, सबको देता महल खजाना डमरू वाला प्यार से, रवि को ही वो ही चमकाता भोला भंडारी मेरा, रवि को भी वही चमकाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा, भोला भंडारी मेरा।
तो श्रोता साथियों, आशा करते हैं आपको आज का अंक अच्छा लगा हो। अब दीजिए अलंकृता को इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो अर्पा रेडियो।
गजर की तरह ब्रिटिश अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो।
गजर की आवाज।